السلام علیکم. یہ پارٹ 28 ہے ناول کال بیل حصہ دوم. یہ ناول نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل, پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری, مصنف سیما غزل. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 28. ارے کون ہے؟ ضیا کے رضا. عمر کی آواز میں بے چینی تھی, میرا دل بھر آیا. ایسی بے چینی کبھی کبھی ہی ان کے اندر پیدا ہوتی تھی. مجھے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بھرے گھر میں رہنے والی آج اپنے بچوں سے بھی جدا اور اکیلی تھی. عصمت آپا کو تو تسلی دنیا بھی نہیں آتی تھی. زہرا آپا ہی تھی جو ان کا دکھ برابر کا بانٹ لیا کرتی تھی. گھر میں اور کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے. میں نے انیتا کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور لپک کر اندر داخل ہو گیا. مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اما کے زرد چہرے پر لمحہ بھر کو رونق پھیلی, پھر انہوں نے منہ پھیر لیا. اما ناراض ہیں؟ میں نے سلام کرنے کے بعد ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا. آپ تو جانتی ہیں کہ میں کیوں گیا تھا, لیکن خط میں خیر لکھنے سے تو کچھ نہ ہو جاتا. وہ ایک دم پھوٹ پڑی. ایک ذرہ ہی بے تعلقی کو کافی تھا. اتنے قریب رہتے ہوئے بھی انہیں گھر والوں کا خیال نہیں آتا. نہ کبھی بہن سے ملنے کی ہڑک ہوتی ہے. زہرا نے لکھا تھا کہ وہیں سے انگلینڈ روانہ ہو گئے. فون کر کے فرض نبھا دیا اور بس. تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ یا بڑے بھائی نے رضا کے بعد تمہیں بھی بلایا ہے؟ وہ بولتی چلی گئی. مجھے پہلی بار دونوں بھائیوں کی بے حسی کا احساس ہوا. رضا بھائی بمبئی میں تھے, نہ میرے پاس ایڈریس تھا نہ زہرا آپا کے پاس, ورنہ میں تو ضرور جاتا. دہلی کے پتے پر لگی بندی رقم بھیج کر وہ گویا تمام فرائض نبھا رہے تھے. میں کہیں نہیں جا رہا اماں, اور اب کہیں بھی نہیں جاؤں گا. اے سچ؟ اماں سارے دکھ بھول گئیں. جی اماں, اب میں یہیں رہوں گا. لیکن اماں آپ بڑے دل والی ہیں. آپ نے اولاد کی ہر خطا کو ہمیشہ معاف کیا ہے. میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیں. میں نے ان کے گھٹنے پر سر رکھ دیا. اچھا چھوڑو, یہ بتاؤ سب خیریت تو رہی نا؟ وہ تشویش سے بولی. شاید انہیں پچھلے عذاب یاد آ گئے تھے. جی اماں, سب خیریت رہی, اور اب مجھے یقین ہے کہ خیریت ہی رہے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن اماں, میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اس سکون کی. کیوں, کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی, مگر ان کے اس موضوع نے آسانی پیدا کر دی. میں نے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتا دیا. انہیں اصل بات سے آگاہ کر کے ہی میں آنے والے طوفان کو روک سکتا تھا. میری باتیں سن کر ان کے چہرے پر ایک نیا رنگ آتا رہا, ایک جاتا رہا. کبھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی اور کبھی وہ سن بیٹھی رہ جاتی. میری شادی کر لینے والی بات سن کر تو وہ لمحہ بھر کو سکتے میں ہی رہ گئی تھی. اے, میں اب بی جان کو کیا جواب دوں گی؟ ابھی جانے سے پہلے ہی تو میں نے ان سے فرحت کی بات کی تھی. وہ اس کے لیے بہت پریشان تھی. بی جان وغیرہ کو جانے کیوں دیا آپ نے؟ بھائی خالہ بھی کہاں مانتی ہیں؟ اور ہاں, شادی کر کے بیوی کو کیا وہیں چھوڑ آئے؟ نہیں اماں, وہ ساتھ آئی ہے. میں نے ہی باہر روک دیا تھا کہ کہیں آپ بلاؤ. جوڑے تو آسمان پر لکھے جاتے ہیں, آدمی کی بس کی بات کہاں ہوتی ہے. وہ جو سوچتا ہے کب پورا ہوتا ہے. اما کا رد عمل سمجھدار لوگوں کا سا تھا, جبکہ مجھے جذباتی رد عمل کی توقع تھی. کچھ دیر ضرور لگی تھی, مگر میرا یہ فیصلہ کہ انہیں سب کچھ سر سچ بتا دینا چاہیے ایک درست فیصلہ تھا. طیب اور انیتا باہر ہی تھے. عصمت آپا کی آوازیں نہیں آ رہی تھی, مگر برتن پٹکنے کی آواز برابر آ رہی تھی. اسود آپا اکثر زبان کا کام برتنوں سے لیا کرتی تھیں، بالخصوص اس وقت جب کسی کو گالیاں دینے کو جی چاہے۔ میں باہر نکلا، انیتا کو اندر آنے کا اشارہ کیا، وہ یوں مسکرائی جیسے حالات اس کی توقع کے مطابق نکلے ہوں۔ اما نے انیتا کو بڑے پیار سے قبول کیا۔ میں بتا چکا تھا کہ وہ اب دنیا میں اکیلی ہے، اور اس کی ماں اور بہن ایک ساتھ ہی مر چکی ہیں۔ اما رحم دل تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ خدشات غلط ثابت کر دیے۔ طیب اسے اپنا کارنامہ سمجھ رہا تھا، خوش تھا۔ عصمت آپا کو پتا چلا کہ انیتا میری بیوی ہے، تو انہوں نے چونک کر مجھے پھر انیتا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کچھ بولی نہیں۔ ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کا چہرہ کسی تاثر کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ کچھ پتا نہیں چلا کہ انہیں اس خبر نے خوش کیا یا غم زدہ، بس اس کے بیٹھے رہ جانے کے انداز نے احساس دلایا کہ ان کے تاثرات زہرا آپا سے مختلف نہیں، صرف طریقہ اظہار محبت مختلف ہے۔ انیتا نے زہرا آپا ہی کی طرح عصمت آپا سے بھی بے تکلفی سے گفتگو کرنا چاہی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ انیتا نے مائنڈ نہیں کیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اما کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اما خوش تھی، انیتا گھر بھر میں گھومتی اور ہستی پھر رہی تھی، طیب اور میں خوش تھے۔ حالانکہ ایک حیرت ہمیں سنجیدہ رہنے پر اکسا رہی تھی، منی دادا اور منی دادی کرول باغ کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ اما نے بتایا کہ شام تک لوٹ آئیں گے۔ یہاں کے ماحول اور اما کے رویے نے مجھے بالکل ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اسود آپا کا رویہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا تھا، وہ معمول کی بات تھی، اس لیے میں بوجھل نہیں ہوا۔ طیب کو وہ زیادہ گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اما نے فوراً ہی کھانے پینے کا بندوبست کر لیا، وہ اور عصمت آپا کچن میں لگ گئیں۔ انیتا نے بھی ہاتھ بٹانا چاہا تو عصمت آپا نے منع کر دیا اور بولی، ہاں اپنے کام خود کرنے کے عادی ہیں، یہ عادت میری بھی ہے۔ انیتا نے ان کے سرد رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، حال ہی میں ڈالی ہوگی یہ عادت، انہوں نے سالن بھونتے ہوئے تنزیہ انداز میں جواب دیا۔ عصمت میرے لیے گھی ضرور بنائیے گا۔ طیب جو ان سے ایسی ہی حرکتوں کی توقع باندھے وہیں کھڑا تھا بول اٹھا، ارے ہاں وہ تو بنے گی، بھلے اتنی بڑی خوشی ہو گھر میں، اور وہ بھی چپ چپاتے۔ اما نے لہک کر کہا، کون سی خوشی؟ عصمت آپا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ عصمت تو زبان بند رکھ، یہ چھٹاک بھر کی زبان ہی فساد کی جڑ ہے۔ اما کو غصہ آ گیا، بھائی بیوی لایا ہے، یہ خوشی کی بات نہیں۔ ہاں ایسے لایا ہے جیسے آٹے کی تھیلی بازار سے لایا ہو۔ میں نے گھبرا کر انیتا کی طرف دیکھا، جو اما سے مٹر کی پھلیوں کی ٹوکری لیے صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے یقیناً سن لیا ہوگا، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ چپ رہ کر کمبخت اما نے دانت کچ کچائے، اخلاق پیدا کر خود میں، اخلاق سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ ہاں عصمت آپا، ایک پتے کی بات بتاؤں۔ طیب جلدی سے بول اٹھا، غالباً اسے ڈر ہوگا کہ عصمت کا جواب اب اور زیادہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ تم ساری پتے کی باتیں اپنے پاس رکھو، میں منی دادا کا انتظار کر رہی ہوں، یہ ساری کارستانی تمہاری ہی ہوگی، بمبئی کی آب و ہوا خراب ہے، میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور بمبئی کی آب و ہوا انسانیت اور کردار کی نشو نما میں معاون ہوتی ہیں۔ میں نے بمبئی کے بہت سے انسان دیکھے ہیں جو وہاں جا کر پڑ جائے، اس کے کردار کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ وہ برابر جواب دیے گئے۔ اچھا چپ رہے فلسفی، کام کر اپنا۔ اما نے اس بار انہیں نوچ ہی لیا، اسے چپ کرائیں۔ وہ بلبلا اٹھی، اپنے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے اسے، دوسروں کو پریشان کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اب بات میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بھنایا ہوا کچن میں پہنچا۔ असमत आपा, आपकी बात मजाक की हदूद से निकल चुकी है। अगर आपको मेरे और अनीता के आने से तकलीफ पहुंची है तो। वो चुप रही मगर अम्मा बिलक उठी। अरे बकने दे इसे, सारा दिन इस पत्थर के साथ सर फोड़ती हो, इस पर किसी बात का असर नहीं होगा। घर भर में अकेली चकराती फिरती है, पत्थरों की दीवारों से मोहब्बत है इसे, इंसानों की चहल पहल खुलती है, भरा घर वीरान होने की सबसे ज्यादा खुशी इसी को है। मजाल है जो कभी किसी बहन या भाभी को याद करके दो आंसू बहा ले। हम बूढ़ों को भी यूं बर्दाश्त करती है कि कोनों में पड़े छतों को तकते रहते हैं, दो घड़ी पास बैठकर जो बातें कर ले। अरे अम्मा आप क्यों रोने लगी? अनीता उठकर किचन में चली आई। असमत आपा वैसे ही सालन भूनने लगी थी जिसे कुछ हुआ ही नहीं। असमत आपा भी क्या करें, रौनक किसे पसंद नहीं होती। अम्मा मगर जब घर में रहने वाले घर को छोड़ गए, पलक कर ना आए तो असमत आपा क्या करें। तन्हाई अकेलापन कड़वाहट नहीं भरेगा तो और क्या होगा। फिर वो मुझसे बोली, चलिए आप कहाँ मैदान में उतर आए, कोई मारका थोड़ी हो रहा है। तैयब असमत आपा बातें कर रहे हैं, करने दें, चलिए अम्मा। इसने अम्मा का बाजू थाम लिया। मैं असमत आपा का हाथ बटाती हूँ, आप आराम करें। वो अम्मा को लेकर तखत पर जा बैठी, मैं भी वहीं आ गया। तैयब भी माहौल में तनाव के खौफ से तौलिया लेकर नहाने चला गया। अनीता मटर उठा कर दोबारा किचन में पहुंच गई। जरा देर बाद असमत आपा पैर पटकती हुई बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। ए हटो भी, ये तो बड़ी मनहूस है, मैं करती हूँ। अम्मा फौरन उठकर किचन में पहुंची, मगर अनीता ने जबरदस्ती इन्हें बिठा दिया और कहा कि वो सिर्फ ये बताएं कि क्या क्या बनेगा। अम्मा जिद करती रही मगर अनीता ने साफ तौर पर कह दिया कि वो कोई काम इन्हें नहीं करने देगी। ये झगड़ा बढ़ा नहीं, मैंने और तैयब ने अम्मा को बिठा दिया, वरना अम्मा मुसलसल बड़बड़ा रही थी। असमत आपा फिर पलट कर ना आई। अनीता ने हंसते हंसते बातें करते सारा काम कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई और ये एहसास भी हुआ कि मैंने कदम उठाया है या जो कुछ हो चुका है वो इतना गलत नहीं हुआ जितना मैं समझ रहा हूँ। सिर्फ घंटा भर के बाद ही जब अनीता ने खाना तैयार हो जाने का ऐलान किया तो अम्मा भौंचकी रह गईं। ए इतनी जल्दी, बुआ पकाना आता भी है तुम्हें कि बस मुरव्वत में खड़ी हो गई। तैयब इनकी बात पर हंस पड़ा, इनका अंदाज ही ऐसा था। अनीता भी हंसी, खा कर देखिएगा। और फिर जब खाना दस्तखान पर लगा तो सभी हैरान हो गए, कई तरह की चीजों तैयार थी। इस खूबी का मुझे अभी अभी पता चला था। तैयब और अम्मा मजे ले लेकर खा रहे थे और मेरे दिमाग में अजीब खुदबुद हो रही थी। एक घंटे के अंदर कई चीजें बना लेना मेरे समझ से बाहर थी। इस बात को शायद तैयब ने भी महसूस कर लिया था। वो खाते खाते चौंक कर बोला, भाभी जायका तो खैर किसी के हाथ में ही आ ही जाता है, मगर आपके हाथों में कोई मशीन फिट है क्या? ए हाँ दुल्हन, ये सब इतनी जल्दी कैसे बन गया? अम्मा ने भी हैरत से पूछा। जल्दी कहाँ अम्मा, आपको बेटे से बातें करने में वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, इसका अंदाज टालने वाला था। बहरहाल अनीता ने लम्हों में अम्मा को हाथ में ले लिया। असमत आपा जाने कहाँ जा चुकी थी। मुझे फिक्र थी कि इन्होंने खाना भी नहीं खाया, मगर अम्मा ने कह दिया, लो वो बुआ भूखी नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करके पेट भर लेती है, तुम ना लाओ। फिर वो जोहरा आपा की खैरियत पूछती रही। अनीता से इसके खानदान के बारे में मालूमात हासिल की, जाने उसने क्या बताया मुझे पता नहीं चल सका, क्योंकि मैं थकान महसूस कर रहा था लेटने को चला गया। अपने कमरे में जाने के लिए मुझे असमत आपा के कमरे के सामने से गुजरना पड़ा था। वहां पहुंचकर ख्याल आया कि अकमत आपा से बात कर लूं। ये भी ठीक था कि इनसे कभी किसी ने बेतकल्लुफी और मोहब्बत से बात ही नहीं की थी। वो बचपन से अखरसी थी, मुंह फट थी। इनकी इसी आदत की वजह से सब इनसे कतराए रहते थे। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कमी क्यों पैदा हुई। अम्मा तो इन्हें पैदा करके भूल गई थी। तहसीन खाला यानी फरहत की अम्मी यही थी। इन्होंने अस्मत आपा का ख्याल किया। वो इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। इनकी मौत के बाद घर का हर फर्द इनसे उलझता ही रहा कि बदतमीज है। इनका प्रॉब्लम मोहब्बत से महरूमी थी, जो तहसीन खाला के बाद और गहरी हो गई। पता नहीं इतने बरस गुजरने के बाद आज मुझे इन बातों का ख्याल क्यों आया था। मुझे अस्मत आपा पर तरस आया। मैंने धीरे से इनके कमरे के बंद दरवाजे को धकेला, वो खुलता चला गया। अस्मत आपा नीम तारीकी में आंखों पर बाजू रखे लेती थी। मैं इनके करीब बिला आहट पहुंच गया। अस्मत आपा, मैंने इनके करीब बैठकर धीरे से इन्हें पुकारा। वो चौंक उठी, बाजू हटा तो इनका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, आंखें सूख हो रही थी। तुम आप रो रही हैं? क्यों क्यों अस्मत आपा, किस नाते सवाल पूछ रहे हो? उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में पूछा। भाई होने के नाते मैं कुछ शर्मिंदा हो गया कि हमारे दरमियान नाता बरकरार है, कभी बरकरार भी रहा था। इनकी आवाज लरज गई। अस्मत आपा, मुझे अपनी कोताहियों का एहसास है, मगर हालात आपके सामने हैं। जहाँ सैलाब से घर बार बह जाते हैं, जिंदा बच्चे मौजों के जेरो बम में गुम हो जाते हैं, जहाँ तूफान सब कुछ उजाड़ कर चला जाता है, जहाँ जर्जरों से ऊंची नीची इमारतें गिर जाती हैं, लोग दबकर मर जाते हैं, वहाँ भी रिश्ते नाते नहीं मरते जिया। बच्चे खींचे रिश्ते एक दूसरे के गम बांटने को और करीब आ जाते हैं। तुम्हारे ऊपर कौन से तूफान गुजरे? अम्मा को गम मिले तो क्या हवास खत्म हो गए थे? नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा मौजूद है, मगर मुझसे हर एक का नाता टूट चुका है। और नाता कोई था ही कब, पहले रोज से नहीं, मैं अजनबी रही। किसी को ये ख्याल भी नहीं आया कि बाप मेरा भी था, दादा मेरा भी था, जो जुदा हुआ। तहसीन खाला से रिश्ता जुड़ा था, जो टूटा तो मैं ज्यादा जख्मी हुई कि बिल्कुल अकेली रह गई। जोरा आपा ब्याही गई तो दुनिया से लिपट कर रोई, मेरा ख्याल इन्हें भी ना आया। भाई गए तो खैरियत की चिट्ठी भेजते हुए एक जुमला लिखने में भी बखल से काम लिया, या शायद मैं याद ही ना रही। इन दीवारों से नाता है सो निभा रही हूँ, मेरा गम और खुशी। हाँ, शायद कोई खुशी भी हो जिसे तुम लोगों ने इन दीवारों ही की तरह देखा, फिर मुझसे क्यों तौकियात बांधते हो? तुम लोगों के साथ मिलकर जीना चाहा तो अकेला कर दिया सबने, और जब अकेले रहने की आदत डाल ली तो मेरी लातल्लुकी खुलती है। क्यों क्यों चाहते हो कि तुम लोगों की खुशी में खुश हूँ, तुम्हारे गम पर रो पड़ूं, परेशानियों में तसल्ली दूं या जागती रहूं? क्यों क्यों करूं मैं ऐसा, क्यों करूं? मैं दम सादे सुन रहा था। वो रो रही थी, मगर आवाज पर पूरा काबू था। आंसू इख्तियार से बाहर थे, मगर लहजा दस्तस में रहा। वही तंदो तेज लहजा, वही तलखी, वही कड़वाहट, वही कसीले जुमले और जहर में बुझे सवाल। मुझे पता नहीं चला कि कब आंखों के किनारे भीगे और कब हलक में नमक खुल गया। अस्मत आपा, मैं बोला तो आवाज अजनबी लगी, लहजा टूटा फूटा था। जाओ जिया, अम्मा बहुत खुश हैं, इनका बेटा आया है, बीवी को साथ लाया है। बीवी खुश है कि सास ने कबूल कर लिया, तुम खुश हो कि मार का सर हो गया। मुन्ने दादा मुतमईन हो जाएंगे। तैयब को तो शायद जिंदगी का तरीका ही जिंदगी का अदराक ही नहीं, वो भी अकेला महसूस होता है। मगर इसे आ गए ही नहीं। सबसे दूर यहाँ वहाँ रौनकें तलाश करना इसके लिए आसान है कि वो मर्द है। शायद इसी भाग दौड़ ने आगाही का दर बंद कर रखा है। मेरी तरह दीवारों के बीच मुकीर होता तो अब तक ये दीवारें गिरा चुका होता। असमत आपा, प्लीज, छलनी हो गया हूँ मैं। मैं आंसुओं को आंखों में ना रोक सका जबकि हर कोशिश कर चुका था। हलक का नमकीन जायका कसीला होकर अब कड़वाहट में तब्दील होने लगा था। क्यों? सिर्फ सुनकर छलनी हो गए? जो मैंने भुगतता था वो महसूस नहीं किया? तुमने क्या क्या सह चुकी हूँ, सोचा भी नहीं गया तुमसे। वो एकदम उखड़ गईं। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने पहली बार असमत आपा को गौर से देखा था, इनकी बातें पहली बार सुनी थी, इनकी आंखों में महरूमियों के जंगल आज पहली बार देखे थे। मैंने कहा, असमत आपा, खुदा के वास्ते बोलती रहिए, बोलती रहिए, बोलती रहिए। असमत आपा, मैं आपको रोक नहीं रहा, अब मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा। दरगुजर करने और नजरअंदाज करने में बहुत बड़ा फर्क होता है जिया। मेरी आदतों को, मेरी तलखियों को दरगुजर करने की बजाय तुम सब ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था मुझे, एक मायार में कैद करके मेरे साए को बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं तो खुद अपने आप से भी कभी नहीं मिल पाती। जानते हो, किसी को खुद इससे जुदा करना कितना बड़ा जुर्म है, कैसा गुना कबीरा है, कैसा खौफनाक अमल है। असमत आपा, मुझे अपने जुर्म का एहसास है। वो तुम्हारी मासूम सी सीधी सादी माँ सादगी ही से गजब ढा देती है। कल कह रही थी, ए अतिया, बे औलादी के गम सह सह कर मर गई। वो खुरचन यहाँ कहाँ से आ गई? अल्लाह भी निराले काम करता है, इन्होंने अम्मा के अंदाज में कहा। लो, और जो को कभी कोई ये कह देता तो कुफर का फतवा देने वाली अम्मा ही होती। यूं तो कुछ भी हो जाए ये कहते नहीं थकती कि अल्लाह के सब काम निराले होते हैं। बंदा तो इसकी हकमत की गिर्द को भी नहीं पा सकता। यहाँ सारे नजरिए सारे एतकाद खाक में मिल जाते हैं। मैं अतिया के घर पैदा हो जाती जो बाप की नाक कटाकर चचेरे के साथ भाग गई थी, फिर वो चचेरा भी 2 साल में ही इसे छोड़कर भाग गया। बेऔलादी का तो इसे बहाना मिल गया होगा। खमीर तो मोहल्ला मिलाना का था, ऐसे बेबाकी के साथ भरे घर में गुजारा कैसे होता। लेकिन अम्मा को तो मेरा वजूद खटकता है, इनके यहाँ पैदा ना होती के चमारन के घर पैदा हो जाती। इनका खमीर तो कभी कभी भी ना खटखटाता ना। ए, क्यों और फोल बकती है बच्ची, मेरी जान, मेरी गुड़िया। अम्मा अम्मा ने आकर मुझे ही नहीं अजमत आपा को भी उछल जाने पर मजबूर कर दिया। वो जाने कब से वहाँ खड़ी सुन रही थी, दौड़ के लपट गई असमत आपा से। इनके पीछे अनिता और तैयब भी थे। अम्मा की आंखों में झड़ी पहली बार देखी थी और अनिता और तैयब की आंखों में भी नमी थी। मैं बेख्तियार औरतों की तरह रो पड़ा। असमत आपा सपाट सर दीवार की तरह तनी की तनी रह गईं। सारे जज्बे जो चेहरे पर बिखरे थे सिमट सिमटा कर आंखों के कोनों में कहीं दुबक गए थे। अम्मा चटाचट इनके चेहरे पर प्यार कर रही थी और असमत आपा इनकी पुष्ट पर अनीता और तैयब को देख रही थी। मैं असमत आपा की खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सका तो इनसे लिपट गया। अब अम्मा और मैं दोनों इन्हें बाहों में भरे हुए थे। असमत आपा, बताइए ना अपने दुख, अम्मा को भी बताइए, इन सब को बताइए, ये गम बांटने ही तो आए हैं, चुप क्यों हो गई, बोलिए ना। फिर अचानक उन्होंने सर उठाकर छत को देखा और उनके दिल खराश चीखें गूंजी तो हम सब की आवाजें इसमें दुबक गईं। गमों का रेला था कि भपरा हुआ तूफान। मैंने पत्थर को इंसान में तब्दील होते देखा। बड़ा अज़ियतनाक अमल था। इससे ज्यादा अज़ियतनाक अमल तो इंसान का पत्थर बनना होता होगा, मगर वो दुख वो अज़ियत असमत आपा ने अकेले झेल ली थी। अनीता और तैयब भी पास चले आए। तैयब और अम्मा ने इन्हें चुप कराने की कोशिश की, मगर मैंने इन्हें ऐसा करने को मना कर गया। रोने दो इन्हें, रोने दे अम्मा। अनीता कुछ दूर दीवार से टिककर दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी। इसके होठों पर आंसूदा सी मुस्कुराहट थी, चेहरे पर इत्मीनान था। ये जलते दहकते लहजे घर के अंदर हरारत दौड़ा गए। असमत आपा की आंख से सारे समंदर बह गए। थकन ने चीखों का दम घोट दिया, जिसम बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अम्मा के जानों पर सर रखकर सबकी मौजूदगी में गहरी नींद सोए तो मैं अनीता और तैयब को लेकर बाहर चला आया। अम्मा की आंखों के सोते खुश नहीं हुए थे। जाने कितने लम्हों की बेहसी याद आई होगी, जाने कौन से गुनाह सरजद हुए होंगे, कौन कौन से जुल्म सीना जख्मी कर रहे होंगे। इन्हें तो बहुत जख्मी होना था और हर जख्म आंसू बनकर रस्ता है, सो इन्हें भी रोना चाहिए था। शाम तक अम्मा वही रहीं, बाहर आई तो शायद आधा बोझ धो आई थी, बाकी बोझ इन्हें अब से लेकर आखिरी नींद तक ढोना था। हम हर जुल्म करते हुए इनकी तादाद भूल जाते हैं, और जब हिसाब चुकाना हो तो रातों की नींदें भी तो उड़ती ही हैं कि सूद बढ़ चुका होता है। रात को मुन्ने दादा और मुन्ने दादी आ गईं। मुझे देखकर मुन्ने दादा चौंके, अनीता को देखकर सकते में रह गए। इनका रद्द अमल वो नहीं था जिसकी मुझे तौक्के थी। मैंने कुछ नहीं बताया। अम्मा ने लम्हा जाया किए बगैर सबको सुनाया। वो खामोश रह गए। मुझे लगा खुश नहीं है। अनीता हसबे साबिक जल्दी ही मुन्नी दादी से बेतकल्लुफ हो गई, मगर मुन्ने दादा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुन्नी दादी ने पहले तो नाराजगी का इजहार किया, मगर जल्द ही अनीता ने इन्हें भी अपना गर्विदा बना लिया। रात के खाने के बाद मैं सीधा मुन्ने दादा के कमरे में पहुंच गया। वजह सबसे बड़ी तौबा थी कि इन्होंने सबके साथ खाना नहीं खाया था, बल्कि अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। दूसरे में अक्का बागिया की बात की तस्दीक चाहता था कि इसने कहा था अपने जिद को रोको, वो बेवकूफियां कर रहा है। मैं अनीता से इनका रवैया भी नोट कर चुका था। सुबह से माहौल में तनाव और खुशगवारी की जो खींचातानी चल रही थी वो बड़ी एहसास शिकन थी। अब मैं इत्मीनान चाहता था और मुझे तौक्के भी थी, मगर मुन्ने दादा की वजह से तकरीबन सभी अपसेट हो चुके थे। अम्मा ने महसूस कर लिया था कि वो ठीक नहीं है। अनीता बड़ी खोजती हुई निगाहों से इन्हें देखती रही थी। असमत आपा उठ गईं, मगर खामोश थी। अलबत्ता इनके चेहरे के खदोखाल में कख्तगी नहीं, नरमी थी। ये खुश आइंदा बात थी। क्या कर बैठे हो तुम? मेरे अंदर दाखिल होते ही मुन्ने दादा ने रूखे अंदाज में पूछा। मुन्ने दादा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। मैं इनके करीब जा बैठा। क्या मतलब? इनकी तेवरियों में बल पड़ गए। तब मैंने सारा मामला कह सुनाया। वो खामोशी से सुनते रहे। मैंने महसूस किया कि अक्का भाग्या के नाम पर उसके जिक्र पर मुन्ने दादा न सिर्फ ये के चौंके थे, बल्कि इनके चेहरे पर नागवार तासर भी फैल गए थे। सारी बात सुनकर उन्होंने मुझे यूं देखा जैसे मेरे बताए हुए वाक्यात पर इन्हें शक हो, मैंने झूठ बोला हो या गलत समझा हो। लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने तक वो कतई खामोश रहे। अक्का भाग्या के कहने पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? उन्होंने मेरी बात खत्म होने पर सर उठाकर मुझे देखा। ये नॉवेल कॉलबेल सदोम का बकिया हिस्सा पार्ट 29 में समाप्त फरमाएं।